कक्षा 12वीं पास करने के पश्चात आगे क्या करना चाहिए। आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुलकर। साथियों, आज मोबाइल वाणी के मंच पर गायकवाड़ कोचिंग क्लासेस के संचालक अधिवक्ता मधुकर जी गायकवाड़ आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार सर जी।
हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको कि अभी कुछ ही दिनों में 12वीं का रिजल्ट आएगा और सब बच्चों के सामने ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि हम अब क्या करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि सरकार जो है कैरियर गाइडेंस के माध्यम से विभिन्न विद्वानों को बुला के बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन बावजूद उसके कुछ अभिभावकों के सामने इसकी समस्या निर्मित होती है। तो आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया और बच्चों की समस्याओं के निदान के लिए मुझे सहभागिता दी। जी
सर जी, जैसा कि अभी आपने भी कहा है और मध्य प्रदेश यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी अभी 12वीं का रिजल्ट आने वाला है और ऐसे समय में छात्रों ने आगे की पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, किस क्षेत्र में करनी चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 12वीं के बाद छात्रों ने किस तरह अपने करियर को चुनना चाहिए।
देखिए, 12वीं के बाद करियर चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे लिए एक ऐसा आधार बिंदु है जहाँ से मान लीजिए एक चौराहा है और हम वो चौराहे पे खड़े हैं, हमको अब कहाँ जाना है। ये जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है, क्योंकि अक्सर करके होता क्या है कि हमको क्लियर नहीं होता बातें। जिनके बच्चे, जिन माँ बाप, जो अभिभावक पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी क्लियर नहीं होता कि करना क्या है। एक्चुअली बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने हिसाब से लक्ष्य नहीं करता है। उसके जो आस पड़ोस के लोग हैं या उसके मम्मी पापा, उनकी जो इच्छाएं होती, वो इच्छाएं उस बच्चे में देखना चाहते। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो पैशन है, पैशन मतलब जो इंटरेस्ट है, उस पैशन को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए। और जो बच्चे पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो चाहे साइंस का, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसको मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। चेतन भगत जी है जिन जो IITian थे, लेकिन उन्होंने उनके अंदर का जो मौलिक गुण था वो लेखन का था। जब उनको इस बात की अनुभूति हुई कि मेरे अंदर तो ये मौलिक गुण है, तो उन्होंने DMLT टेस्ट करवाया था, जो जेनुइन टैलेंट का पता करते हैं हम उसके माध्यम से। तो उनको पता चला कि मेरे अंदर तो लेखन क्षमता का गुण है। तो वो जब इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो आज हम देखते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा कि अपना जो जेनुइन टैलेंट, क्योंकि हम जब माँ के गर्भ में आते तो हमारे अंदर जो है 3 माह के पश्चात, माँ के गर्भ में जब हम 3 माह के होते हैं, उसके पश्चात एक बेसिक कोई गुण हमारे अंदर निर्मित होता है, उसको यदि हम लोग जान ले। हालांकि DMLT टेस्ट होती है लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ती है। मैंने भी अपना DMLT टेस्ट कराया था तो मेरा तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में क्या करें। तो आपकी जो 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें वो एक पेज में लिख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है, जो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी लगती है। फिर उस 10 में से 5 को निकाल लीजिए, फिर 5 में से 3 को निकाल लीजिए, और 3 में से जो एक बचेगा वो आपका जेनुइन टैलेंट होता है, उसको आधार बना के आप आगे बढ़िए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और मैंने ये चीज देखा है कि यदि आप अपने पसंद के काम को करते हैं तो निश्चित मानिए आप जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, उसमें कोई डिविजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आज जितने भी बड़े लोग बड़े पदों में पहुंचे हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, वो कोई परसेंटेज वाले नहीं थे। सचिन उसका एक उदाहरण है, बिस्मिल्ला खान साहब जो शहनाई वादक थे। अब कौन अभिभावक अपने बच्चों को शहनाई बजान देगा और कैरियर बना देगा, लेकिन बिस्मिल्ला खान साहब ने शहनाई को इतना जबरदस्त अपना प्रोफेशन बनाया कि उनको भारत रत्न मिला। तो ये होता है जेनुइन टैलेंट। और इस जेनुइन टैलेंट को माँ, उनके पिता या अभी मतलब जो शिक्षक होता है, बहुत अच्छे जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने जेनुइन टैलेंट को जानिए, आप किसी को देख के अपना लक्ष्य तय मत करिए। जी
सर जी, जैसा कि अभी आपने अनुवांशिक गुण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज इस अवसर पर कि कक्षा 12वीं में विविध विषयों में छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं, जिसमें कला, साइंस, बायो, और जब वो आगे की पढ़ाई करते तो कुछ इस तरह की परीक्षा होती है कि वो परीक्षा पास करने के बाद अच्छे से अच्छे कॉलेज में नंबर लग सकता। तो हम आज इस अवसर पर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी परीक्षा है जो परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद में छात्रों को आगे अध्ययन करने के लिए सुविधा प्राप्त होती है।
देखिए, इसमें जो जैसे आर्ट्स का बच्चा है, आर्ट्स को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है उसको, तो वो बारहवीं में आर्ट्स ले सकता है, आर्ट्स के विषय लेके भविष्य में वो बीएड कर सकता है, नेट की एग्जाम पास करता है जिसको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं, और उस आधार पे वो कॉलेज का प्रोफेसर बन सकता है। यदि वो साइंस का स्टूडेंट है, यदि वो बायोलॉजी वाला है, तो उसके लिए वो पीएमटी की एग्जाम की तैयारी कर सकता है, या फिर इंजीनियरिंग मतलब गणित वाला है तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, तो आपको ये सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उस लक्ष्य के कार्य क्षेत्र को देखिए आप, कि उस कार्य क्षेत्र को देखने के पश्चात आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या मैं इस तरह का कार्य कर सकता हूँ। हम लोग लक्ष्य निर्धारण करके विषय तो ले लेते, लेकिन बाद में जब वो प्रोसेस शुरू होती है, क्योंकि प्रोसेस हमेशा कठिन होती है, तो उस कठिनाई की प्रोसेस को देख के फिर हम घबरा जाते हैं और अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने भी कहा है कि आप लक्ष्य वो चुनिए जिसमें आपका मन लगता है। मैंने इसके पहले भी कहा, और यदि हम मन लगने वाला काम करें तो निश्चित मानिए हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कई लड़कियां डिजाइन बहुत अच्छा बना लेती है, कई बच्चे बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं। एक हमारे परिचित है, उन्होंने अपने बच्चे को मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई, लेकिन उसमें कुछ और ही टैलेंट था, तो उन्होंने उसको गायन के क्षेत्र में भेजा था। आज वो बंदा जो है पुणे में एक बहुत बड़े कॉलेज में गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि कई बच्चे गाते बहुत अच्छे। तो सब बच्चे में अलग अलग वेरायटी, क्योंकि हमारा जो बाल मनोविज्ञान है उसके यदि अध्ययन करें तो सब बच्चे में भिन्नता होती है, और भिन्नता का आधार हमारा वातावरण, हमारी वंशानुगत स्थिति होती है। इसलिए अपने व्यवस्था को समझिए, अपने टैलेंट को देखिए और उस आधार पर लक्ष्य तय करिए। और आप जो भी लक्ष्य तय करेंगे उसके लिए आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई कि हम गूगल के माध्यम से या फिर अपने सर लोगों के माध्यम से आजकल हर स्कूलों में कैरियर कैसे बनाए उसका चार्ट लगा होता है, उस चार्ट के आधार पर आप तय कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि लक्ष्य निर्धारण करना केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है, जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, टूरिज्म का कोर्स है, आपका बैंकिंग का सेक्टर है, आईएएस है, एमपीपीएससी है। सब माता पिता बिल्कुल ऐसी अंधी दौड़ में लगे हैं सारे डॉक्टर इंजीनियर। तो आप ये बताइए उस बच्चे की क्षमता क्या है। आपने एक पिक्चर आई थी तारे जमीन पे, आपने देखा होगा, उस बच्चे का जेन्युइन टैलेंट किसी और क्षेत्र में होता है और हम उसको लगे किसी और चीज को कराने में, तो फिर दिक्कतें होती है, फिर बच्चा पढ़ने को नहीं देखता, इंटरेस्ट नहीं लेता। इसलिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर का जेन्युइन टैलेंट के आधार पर उसका लक्ष्य तय करे वो। और उसका आधार क्या हो सकता है, जैसे कोई सिलेबस है, सबसे पहले उस जो भी आपका विषय चयन करना उसका सिलेबस देखिए, उस पर पूछे गए प्रश्नों को, तो आप क्या करिए उस सिलेबस का टॉपिक पढ़ के उस प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। यदि आप उसमें सक्सेस हो रहे, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लगाइए उसमें, ऐसे घाई नहीं करना है। और यदि आप उस प्रश्नों को हल करने में सहजता महसूस करते हैं, आपके दिमाग में उसका चित्रण होता है विषय का, तो आप बहुत अच्छे से उस विषय को ले सकते हैं। आप खास करके मैं बच्चियों के लिए कहना चाहूंगा कि वो विषय का चयन कैसे करती है, कि कोई उसकी सहेली है, अब उसका गणित विषय है, उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब साथ में जाने के लिए कोई नहीं है स्कूल तक या बाहर का जाना पड़ता है, तो वो जो उसने जो विषय लिया उस विषय को हम लोग अपना आधार बनाते हैं, तो ये विषय चयन का बहुत ही गलत आधार है। इसलिए आप अपने नंबर के आधार पर विषय का चयन मत करिए कि किसी विषय में आपको ज्यादा नंबर आए, आप ये देखिए कि आपको किस विषय को पढ़ने में सहजता महसूस होती है, किस विषय में आप बहुत अच्छा खेल सकते, किस विषय में बहुत अच्छा विश्लेषण कर सकते, बहुत अच्छा तर्क कर सकते। तो अब मैं खुद देखिए, मैं साइंस लेके पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि मैंने डीएमएलटी टेस्ट में मैंने देखा कि क्योंकि मेरे पीएससी और राजस्थान पीएससी और मध्य प्रदेश सिविल सर्विस के एग्जाम दिया, तो मैंने आर्ट्स के विषय दिए थे और मैं बहुत अच्छा कर पाया उसमें। जी
सर जी, जैसा कि अभी आपने छात्राओं की भी बात की है कि अपना लक्ष्य कैसा निर्धारण करें, चयन कैसा करें, अधिकतर आप भी कहीं जाते हो, हम भी जाते हैं, पुलिस थानों के सामने एक स्लोगन लिखा होता है, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति जनसेवा। और चूंकि आप भी एक कोचिंग क्लासेस का संचालन करते हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे कि आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में 12वीं के बाद छात्र अपना लक्ष्य कैसे निर्धारण करे।
नहीं, वो तो एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, और अभी देखिए हमारा संविधान भी खुद कहता है कि आर्टिकल 15(1) कि लिंग के आधार पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो अब तो भारत सरकार ने भी बहुत सारी मतलब जो सैनिक व्यवस्था है उसमें लड़कियों को लेना शुरू किया। मेरी क्लास की खुद एक लड़की अभी सिक्किम में है, पोस्टेड है, वो सीमा सुरक्षा बल में उसका चयन हुआ है, बहुत अच्छा है। एक मेरी छात्रा पुलिस सब इंस्पेक्टर है, दो तीन लड़कियां हैं मेरी क्लास की जो सब इंस्पेक्टर बनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बस ये है कि आपके अंदर की शक्ति आपको पता होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे ना बहुत होशियार होते हैं, लेकिन वो संकोच की भावना रहती। मैं अपने क्लास के माध्यम से मेरे यहाँ भी सैकड़ों बच्चे प्रशासनिक सेवा, भारतीय रेलवे और पुलिस सेवा में गए हैं, तो मैं अपने यहाँ आने वाली हर लड़की को इस बात का एहसास कराता हूँ कि तू अपने अंदर की अपनी क्षमता को पहचान, अपने को सहारे की आवश्यकता लेके चलेगी तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। अब जैसे आपने कहा कि देशभक्ति मतलब देशभक्ति जनसेवा का जो कोटेशन लिखा रहता है पुलिस का, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल नाम मात्र का लिखा है, लेकिन वहां पे भी जो लड़कियां काम करती है पुलिस व्यवस्था में, मेरी छात्राएं कुछ लड़कियों को देखा हूं मैंने कि उनके वरिष्ठ अधिकारी किस तरीके से उनको मतलब दिक्कतें देते हैं, क्योंकि कभी कभी तो वो लड़कियां खुद कहती है कि हमने पुलिस की सर्विस ज्वाइन करके दिक्कत महसूस कर रहे। तो ये कुछ लोगों की मानसिकता होती है, वरिष्ठ अधिकारी भी बहुत बड़े अधिकारी अपने आप को मानते हैं और लोग बड़ा इज्जत देते हैं उनको, लेकिन वो संकुचित मानसिकता के होते। मैंने देखा कि गौरव तिवारी सर एक बहुत अच्छे अधिकारी रहे, उन्होंने अपने अधीनस्थ जो आरक्षक है या उनको हमेशा प्रमोट किया, उनको किताबें बोला है पढ़ने के लिए, उन्होंने कहा है कि भाई आपके संसद में बहुत अच्छी कोचिंग है, चलती वहां कोचिंग करिए। मतलब कुछ अधिकारी ऐसे भी है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे देखे कि वो अपने बच्चों को IAS बनाना चाहते, IPS बनाना चाहते, लेकिन उनके अधीन कोई अधिक कर्मचारी है पुलिस में तो वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम होती। यही लड़कियों के साथ हुआ है कि कई लड़कियों को ऐसी ड्यूटी दे दी जाती थी कि बड़ा अजीब लगता है यार। मतलब ठीक है आपका काम ड्यूटी देना है, लेकिन किसी को परेशानी हो रही तो थोड़ी उसमें मानवता भी रखी जानी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन है क्या है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चियों को पुलिस में नहीं जाने देना चाहते। फिर भी हालांकि कई लड़कियां आती है, तो ये वो लड़कियां हैं जो थोड़ा सा उस तरह की दबंग स्टाइल में आती है, और मैं कहता हूँ कि लड़कियों को दबंग स्टाइल में ही आपको जिंदगी जीना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की सेवा में जाना चाहोगे, क्योंकि अब वो सुरक्षा का कवच तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। और बहुत सारी लड़कियां सेना में, पुलिस में, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों की संकुचित मानसिकता को अपना आधार न बनाए, अपन अपने बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश करें, और लड़कियां बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। अभी तक मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां अधिकारी बन चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लास में बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाता हूँ, और कई ऐसी बच्चियां भी होती है जिनकी फीस की व्यवस्था नहीं होती, तो मैं कम फीस में या कई बार तो निःशुल्क भी उनको पढ़ा देता हूँ, ताकि वो बच्ची अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य, हम अपनी व्यवस्था के लिए थोड़ा सा फीस लेते हैं, बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरे सांसद और पाड़ना इलाके के जो बच्चियां हैं जबरदस्त देश में नाम रोशन करें, और कर भी रही है, बहुत सारी अधिकारी बन गई मेरी क्लास की लड़कियां। तो मैं बच्चियों को आह्वान देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनके लिए सर्वसुलभ हूँ, और आप मेरे से जब चाहे मिल सकते, पूछ सकते, बिल्कुल उनके साथ हमेशा मैं खड़ा हूँ। जी
सर जी, अधिकतर आप कोचिंग क्लासेस के अलावा हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाते हुए NSS कैंपों में, बौद्धिक सत्रों में सुनते हैं। तो आपका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, जीत के दिखाओ एक रुपया। ये जीत के दिखाओ एक रुपया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है?
देखिए, इसके पीछे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य है। अभी मैं देखा कि पालो नामे अभी मतलब एक संस्कार शिविर चालू हुआ था, तो मैं वहां गया था, तो मैं देखा कि बच्चों में वो एक रुपया जीतने के प्रति जो उत्साह रहता है, ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किसी एक रुपये को जीतना, वहाँ सैकड़ों संख्या में बच्चे थे, और मैं उनको जब सवाल करता था कि भाई स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, भगवान विट्ठल की पत्नी का, तो इस तरह के प्रश्नों के माध्यम से उत्साहित, क्योंकि क्या होता है साहब, हर बच्चे में टैलेंट होता है, उसके अंदर उत्साह पैदा करना होता है, केवल रटवाना पढ़ाई की पद्धति नहीं है। और मेरा फंडा यह है कि मैं उत्साह पैदा करता हूँ, और मैंने ये चीज देखा कि कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, हर बच्चे में जबरदस्त टैलेंट होता है, बस आपकी पढ़ाने की टेक्निक बच्चे के अंदर उत्साह पैदा करने वाली होनी चाहिए, और वो उत्साह पैदा करने का मेरा तरीका है। और ये तरीका मैंने सचिन के जो गुरु थे रमाकांत आचरेकर जी, क्योंकि वो जब सचिन को आउट करने के लिए इनाम रखते थे 1 रुपया, और यदि मान लीजिए सचिन नहीं आउट होता तो वो 1 रुपया सचिन रख लेते थे, तो उनके पास बहुत सारे सिक्के हो गए। तो ये एक स्वस्थ मानसिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, और इससे मैंने देखा, मैं अभी कई सारे सेमिनार में बच्चों को ये सब करवा के देखता हूँ, तो बड़ा उत्साह पैदा होता है और वो मेरी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो जाते कि हाँ आप सर 1 रुपया इनाम देंगे, और वो 1 रुपया इनाम सबके बीच में हाथ खड़ा करके उत्तर देना, तो ये उनके आत्मबल को बढ़ाता है। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि उनका आत्मबल बढ़े, वो हाथ खड़ा करना सीखे, क्योंकि हमारे बच्चे प्रश्न करने की प्रवृत्ति आना चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए जिंदगी में बहुत जरूरी होता है कि बच्चा प्रश्न करे, प्रश्नों का उत्तर दे, अकेले खड़े होके पूरे भीड़ में उसका उत्तर देने की क्षमता पैदा हो। यदि वो आत्मविश्वास बच्चे के अंदर आ गया तो ये मान के चलिए कि साधारण गांव के भी लड़के नया शिखर पे स्थान प्राप्त कर सकते, ये भरोसा मुझे, इसलिए मैं इस तरह से 1 रुपया दे के गाँव में जा जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिन परिस्थितियों को देखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन अपना शनिवार का दिन या हफ्ता का कोई दिन निकाल के बच्चों के बीच जाता हूँ, और जब उनके अंदर उत्साह भरता हो और एक लाइन में कहता तो हम जहाँ से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ये जो बात है उनके अंदर बड़ा जबरदस्त जोश भर देती है। अभी कैरियर मेला हुआ था तो मुझे 8 स्कूलों से निमंत्रण आया था, तो उनको मैंने वो परंपरागत तरीके से नहीं बातें बताई, मैंने उनको एक नए स्टाइल से बताई कि जैसे आप शादी में जाते हो, बफे में जाते हो, तो आप जब शादी में काहे के लिए जाते हो, तो बोले खाना खाने, तो मैंने कहा खाना खाने जब बफे है तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाता है, बोला तो बोले गुलाब जामुन, तो मैंने कहा क्यों जाता है, क्योंकि वो आपका पसंद की चीज है। तो बस अपने जीवन का लक्ष्य भी वो तय करिए जिसमें आपको बहुत मजा आता है, जिसके साथ चलने में, खेलने में, सोचने में बहुत मजा आता है। जब आप अपना लक्ष्य ऐसा तय करेंगे तो निश्चित मानिए आप शिखर पे होगे, और कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। होशियार बच्चों को तो हर कोई पढ़ाता है साहब, लेकिन गायकवाड़ सर एक ऐसे बंदे हैं जो कमजोर से जीरो से शुरुआत करते और उसको हीरो बना के मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवाएं देने के लिए तैयार करते। जी
सर जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न आज इस मंच के माध्यम से, अभी जो छात्र कक्षा 12वीं पास करके निकलेंगे तो इन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस तरह करनी चाहिए?
देखिए अभी जैसे वो 10वीं पास हो गए, कोई 12वीं पास होता है, तो मैं एक अपने इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 10-12 साल से पांडुनाव, सोनसर और आसपास के इलाकों में मेरी क्लासेस चलती हैं, तो मैंने देखा कि हम लोग पूरा ध्यान परसेंटेज के ऊपर देते, पर मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि अभी देखिए गायत्री परिवार का सोनसर में पुस्तक मेला लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे पुस्तकें पढ़ने की आदत डेवलप करें, क्योंकि जब उसके अंदर पुस्तकें पढ़ने की आदत डेवलप होती है तो विश्लेषण, उनकी समझने की क्षमता, मतलब आत्मविश्वास, संबोधन की क्षमता बढ़ती है और समझने की क्षमता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, तो पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। दूसरी चीज, हमारे इलाके के बच्चे पेपर नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं, न्यूज नहीं देखते। अपने टैलेंट को बढ़ाना है तो आप 6वीं से 10वीं तक की बेसिक बुक पहले पढ़ लीजिए, भले ही आपने पढ़ लिया हो। दूसरी चीज, आप अखबार जो आता है, चाहे दैनिक भास्कर हो, नवभारत हो, जो भी हो आपके पास उपलब्ध, उसकी जो संपादकीय आती है उसको पढ़िए। संपादकीय पढ़ने से आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। जो पत्रकार लोग बड़े बड़े आर्टिकल लिखते वो लिखिए, जैसे मोबाइल वाणी जो कभी कभी डिस्कशन कराती है, कई विद्वान लोगों के इंटरव्यू देते हैं, उनको देखिए। तो आपको पेपर्स पढ़ना है, न्यूज देखना है, और जो डिबेट होती है, जो चर्चाएं होती है मोबाइल पे, मोबाइल वाणी पे या टीवी पे या रेडियो पे, उसको सुनिए, क्योंकि उससे आपके अंदर प्रश्न करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम, ISO या PSC, इसमें ज्ञान का आकलन नहीं होता, जो ज्ञान आपके पास है उसको लिखना कैसे है उसका होता है परीक्षण। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से डायरी लिखना शुरू करिए, NCERT पढ़िए, न्यूज देखिए, और डिबेट जरूर सुनिएगा, क्योंकि डिबेट सुनने से पक्ष विपक्ष के तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर भी विकसित होती है, और ये प्रोसेस धीरे धीरे इस प्रोसेस के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और हमेशा अच्छी संगत में रहिए। मैं खास करके लड़कियों को कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे समाज में घर से पलायन करके शादी करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये बहुत खतरनाक है। और मैं ये मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बच्चियों को उनके माता पिता इसलिए बाहर नहीं भेजते पढ़ने के, क्योंकि हमारा समाज है ना असुरक्षित होते जा रहा है, तो ऐसा वातावरण निर्मित न होने दे, हम पढ़ने के लिए जाए, बहुत अच्छा पढ़े। और कुछ नहीं करना है, आपको अपने पास एक नक्शा रखना है, अपना सिलेबस रखना है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स रखना है और बेसिक पढ़ना शुरू करिए एनसीईआरटी से। नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाने से रिवीजन करने में हमको बहुत मदद मिलती है, बार बार पढ़िएगा और फिर लगाइएगा प्रैक्टिस सेट। दुनिया की कोई सी भी एग्जाम हो आप निकाल लेंगे। महंगी फीस देके कोचिंग करने का कोई औचित्य नहीं, टैलेंट टैलेंट होता है और टैलेंट झाड़ के नीचे भी आप बिहार यूपी के लोगों को देखो, सबसे ज्यादा आईएएस सबसे ज्यादा इंजीनियर वो पैदा कर रहा है जबकि सबसे गरीब राज्यों में। इसका मतलब है कि पढ़ाई का टेक्निक सही हो तो महंगी फीस की आवश्यकता नहीं होती, सस्ती फीस में भी बहुत अच्छी कोचिंग की जा सकती और आप अपना लक्ष्य पाएंगे। हम लोग आपके साथ है, दिनकर पातुरकर जी आपके साथ है, पीकेएस गुर्वे सर आपके साथ है, मधुकर गायकवाड़ जी आपके साथ है, इस इलाके के बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे बहुत सहयोग करते हैं, भास्कर गावंडे सर है बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, बच्चे के विजय धुंडे जी है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग, मांगे सर है बहुत अच्छा है, अपने सूर्य कीर्ति काले सर है, ये बहुत सारे लोग है, प्रदीप गायकवाड़ सर है जो बहुत अच्छा मैथ ब्रेडी में पढ़ा रहे, अपने काकड़े सर है जो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, संजय विश्वकर्मा सर है बहुत बेसिक अच्छा मैथ पढ़ाते, तो ये लोग है जो कैरियर गाइडेंस से जुड़े हुए और बहुत अच्छा गाइडलाइन आपको कर सकते हैं। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से आना है और ये बताइए कि सर मेरा मन इस काम में लगता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से पता हो, कंप्यूटर की जानकारी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और मैथ, ये तीन चीजों पर कमांड कर लीजिए, आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके पास रोजगार की भरमार रहेगी। और एक जबरदस्त सोच लेके चलिए, धैर्य रखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिलती है, प्रोसेस कठिन होती है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मोबाइल वाले के मंच से उन छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया जो कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद वो अपना लक्ष्य किस तरह निर्धारित करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी नमस्कार सर। नमस्कार।